ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होकर लौटे स्वदेश। कहा, उनकी भारत यात्रा से दो देशों के बीच बढ़ा है आपसी सौहार्द। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे को प्रदेश सभा से मिला विश्वास मत। इस साल का मॉनसून पहुंच गया नेपाल और भारत के जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्री सवार बस पर आतंकवादियों के हमले में कम से कम 10 लोगों की हुई मौत, अन्य 33 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ा है। भारत का औपचारिक दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री के स्वदेश लौटने पर आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा ने आपसी समानता और लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, बहुआयामी और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि ये यात्रा आने वाले दिनों में उच्च स्तर और विभिन्न स्तरों पर संपर्कों के विस्तार का मार्गदर्शन करेगी और संबंधित द्विपक्षीय संयंत्र के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में नेपाल भारत संबंधों को और मजबूत करने और दोनों देशों के बीच अतीत में हुए समझौतों के क्रियान्वयन, सभी द्विपक्षीय संयंत्रों की बैठकों को नियमित करने, पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण जल विद्युत परियोजना और कृषि क्षेत्र में सहकार्य जैसे विषयों में गंभीर बातचीत हुई थी। इससे पूर्व त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के विशेष कक्ष में सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल, उप प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। प्रधानमंत्री प्रचंड के स्वागत में नेपाली सेना की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। इससे पूर्व भारत में रहते हुए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की थी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में उनके बीच नेपाल भारत के बीच के संबंधों और द्विपक्षीय हित के विविध विषयों पर चर्चा हुई थी। इसी तरह प्रधानमंत्री प्रचंड से भारत के नवनियुक्त संघीय मंत्री एस जयशंकर ने भी शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड से भारत के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारतीय निवेशकों के लिए नेपाल को उपयुक्त देश बताते हुए पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का उनसे आग्रह किया। काठमांडू में आयोजित होने वाले तीसरे निवेश सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल ने कानूनी ढांचे में व्यापक सुधार कर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना उचित होगा। बता दें कि भारत सरकार के साथ 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली बेचने का दीर्घकालिक समझौता हो चुका है। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे ने प्रदेश सभा से विश्वास मत प्राप्त किया है। गंडकी प्रदेश सभा की आज की बैठक में मुख्यमंत्री पांडे द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत संबंधी प्रस्ताव को सभा के बहुमत ने पारित किया। गौरतलब है कि उनके विश्वास मत के पक्ष में 31 और विपक्ष में 28 मत थे। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी ने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केंद्र और नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रदेश सभा सदस्यों को समेटकर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। नवनियुक्त मंत्रियों ने आज ही पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। वैशाख 6 गते मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए सोडारी ने तीसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। इसके साथ ही सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद 10 सदस्यों की बनी है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण संबंधी सार्वजनिक महत्व वाले प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। सांसद सोनाम गिलजन शेरपा ने प्रस्ताव को पेश किया था। विचार विमर्श के दौरान सांसदों ने कहा कि सड़कों की मरम्मत नियमित न होने, ट्रैफिक प्रबंधन प्रभावकारी न होने और क्षमता से अधिक यात्रियों और माल सामान लादने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। विचार विमर्श में उठे सवालों के जवाब देते हुए उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय यातायात नीति और सड़क सुरक्षा आईन सदन में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर स्विट्जरलैंड के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत रामप्रसाद सुवेदी को आज सान मरीनो के लिए भी गैर आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। इसी तरह राष्ट्रपति पौडेल ने आज ही संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए नेपाल के स्थायी नियोग न्यूयॉर्क के लिए स्थायी प्रतिनिधि लोक बहादुर थापा को गणतंत्र निकारागुआ के लिए भी गैर आवासीय नेपाली राजदूत की जिम्मेदारी सौंपी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। इस साल का मानसून कोशी प्रदेश के पूर्वी भूभाग में आज प्रवेश किया है। बता दें कि आमतौर पर नेपाल में मानसून जून 13 को प्रवेश करता है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक इस वर्ष का मानसून अपने समय से 3 दिन पहले आया है। कुछ दिनों में नेपाल के अन्य हिस्सों में भी मानसून धीरे धीरे सक्रिय होने की उम्मीद जताई गई है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी मानसून में देश के अधिकांश स्थानों में औसत से अधिक बारिश होने की 35-55% तक संभावना है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए साधन स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने की जरूरत है। आज जनकपुर में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय एकता प्रथम महाधिवेशन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नेपाल ने यह बात कही। मौके पर नेपाली कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुङ, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ स्वर्णिम बागले लगायत ने अपने अपने विचार रखे थे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कल से ललितपुर में संचालित होने वाले श्रमाधान रोजगार मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सिंहदरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललितपुर में होने वाले श्रमाधान मेले की तैयारी संबंध में जानकारी दी गई। मंत्रालय के उपसचिव एवं मेला संयोजक डंबर बहादुर सुनार ने बताया कि रोजगारदाताओं के 80 स्टॉल रहेंगे और इसमें विविधताओं को समेटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद मिसेल मंगाने का आदेश दिया है। दो न्यायाधीशों डॉ मनोज कुमार शर्मा और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की आज की साझा पीठ ने उप प्रधानमंत्री लामिछाने को निलंबित करने की मांग के साथ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद जरूरी मिसेल मंगाने का आदेश किया। सुप्रीम कोर्ट के सह प्रवक्ता गोविंद घिमरे के अनुसार जितेंद्र बाबू युटराय यानी जीबी राय समेत शामिल रहे सहकारी घोटाले के मामले की रूपंदेही जिला अदालत में रही मिसेल को मंगवाने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इस मामले को अग्राधिकार देते हुए अगली सुनवाई आषाढ़ 4 गति के लिए तय की गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि वीर टीचिंग प्रसूति गृह लगायत सरकारी अस्पतालों में 2400 घंटे शल्य क्रिया सेवा संचालित करने की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज की बैठक में मंत्री यादव ने कहा कि नागरिकों को शल्य क्रिया के लिए बरसों इंतजार करनी पड़ रही मौजूदा स्थिति को हटाने के लिए सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। मंत्री यादव ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में ट्रांसफर किए गए चिकित्सक अगर ड्यूटी पर नहीं गए तो कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी की टोली ने ठगी मामले में अनुसंधान के लिए सेंचुरी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व कम कीमत की सिक्योरिटी पर अधिक कर्ज प्रवाह करने के आरोप में बीते फागुन 15 गते सेंचुरी बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्योपाने और तुलसी गौतम सहित अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सिरहा नवराजपुर गांवपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत 14 लोगों के विरुद्ध आज विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया है। मध्य प्रदेश सरकार के सांसद अनुदान से राम जानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरा में अधूरा काम पूरा करने के लिए दी गई रकम का बिना कोई काम किए अपचलन किए होने के मामले में उनके विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता नरहरि घिमरे ने बताई। रेडियो नेपाल ने कल से बाजुरा में एफएम रिले प्रसारण शुरू किया है। जिले की बड़ी मालिका नगर पालिका वार्ड नंबर 7 काला जकरा पोरखेगढ़ी से एफएम बैंड के 98 मेगाहर्ज पर परीक्षण प्रसारण शुरू किया है। बता दें कि काला जकरा में मौजूद नेपाल टेलीकॉम के रिपीटर टावर के पास ही रेडियो नेपाल के एफएम रिले स्टेशन की स्थापना कर 500 वाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर के साथ प्रसारण शुरू किया गया है। रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर किसी ने कहा कि देश के 100% भूभाग में रेडियो नेपाल की पहुंच का विस्तार करने के लक्ष्य के मुताबिक एफएम रिले स्टेशन स्थापित कर प्रसारण शुरू किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आज शाम शिवखोड़ी धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सड़क के बीच में खड़े होकर आतंकी बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। ड्राइवर को गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें ड्राइवर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वैष्णो देवी धाम और अमरनाथ धाम पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि रियासी में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पर मनोज सिन्हा ने बताया है कि इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का जम्मू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये बस शिवखोरी से कटरा जा रही थी। इसी दौरान इस पर हमला किया गया जिसके बाद बस खाई में जा गिरी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होकर लौटे स्वदेश। कहा, उनकी भारत यात्रा से दो देशों के बीच बढ़ा है आपसी सौहार्द। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे को प्रदेश सभा से मिला विश्वास मत। इस साल का मॉनसून पहुंच गया नेपाल और भारत के जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्री सवार बस पर आतंकवादियों के हमले में कम से कम 10 लोगों की हुई मौत, अन्य 35 से अधिक लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।